comes from my own activities. Therefore, knowing that it's coming from Krishna, if I'm a conditioned soul, I know that it's for my purification, that it's a summary punishment of my own sinful reactions. And when I see such things happening to a pure devotee, like Draupadi, when Dusasana and Duryodhana tried to derobe her, or to Prahlad, when his father tried to kill him, that it was not due to any past sinful activities of theirs, because they are eternal associates of the Lord, but it's just to instruct us how to tolerate and how to worship and love Krishna and never be angry at him for whatever happens, but to increase with our heart, our body, and words service to him enthusiastically. Srila Gurudev gave a very interesting story in this connection, that there was a beautiful elderly Brahmani lady who had a young 9 or 10 year old son. And she would maintain herself by begging, and she would engage herself daily in worshipping her deity. One day, very early in the morning, she sent her son out to pick flowers. And while he was picking flowers, a venomous snake came and bit him. He immediately turned black and died. A hunter happened to see this, and the hunter immediately caught the snake because he knew a mantra for enchanting a snake. And he put that snake in his pot and closed the lid, took the boy on his arms, and brought him to his mother. He begged. When she saw her son, she began weeping and weeping, and when she was finally calmed down, the hunter told her what happened and said, "Please give me order that I may kill this snake." So she, being a self-realized soul, said, "Well, if you kill the snake, will that bring back my son?" He said, "Of course not." Then she said, "Then don't kill the snake." So he said, "But if I kill the snake, then other people won't be killed by the snake." So she knew that it was something divined by the Lord because of something that her son had done. She said, "No, don't kill the snake." But he was insistent. And just as he was going to kill the snake began speaking. The snake said, "Wait a minute, this is not my fault. This was ordained by time. And the time had come to give the boy sinful reactions. This was caused by Kal, or time, or death." All of a sudden, Kal himself, time himself, appeared and said, "This was not my doing. This was the doing of the boy himself. In his past life, he was a human, and that snake was a human. And they had a fight, and your son killed that boy. Now he came back as a snake to kill your son. So it was the fructified sinful reactions of your own son." So in this way, the hunter learned something about karma. So Srila Gurudev, when he was telling this about this verse and this story and so many other things about this verse, he said, "Now every one of you should take this verse in your heart. As I'm telling you about this verse, you should open your eyes wide. Stop anything else that you're doing." He probably called on me because I was drawing. He said, "Stop everything else that you're doing. Put your eyes wide open on me, your ears wide open, and open your mouth wide open. And later on, after I finish this class, you can do anything you want. Why should you open your mouth? Because the wife of Vyasadeva opened her mouth wide in enthusiasm as her husband was speaking, and Sukadeva Goswami, who's the embodiment of transcendental knowledge, flew in. So you'll also get transcendental knowledge and realization by hearing and understanding and taking this verse in the heart."
ये बहुत असंभव सा लगता है, किंतु भक्तों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है. It is very hard and rare in history too, but it is natural in devotees, pure. सब समय समझो हमारे सुख और दुख जो आ रहे हैं, मान अपमान जो आ रहे हैं, इसका कारण स्वयं मेरे पूर्व जन्म के कर्म है अथवा भगवान की कृपा से हमको शुद्ध करने के लिए ऐसा है, फिर क्रोध नहीं आएगा। अव्यर्थ काल उत्पन्न, अव्यर्थ तो खराब नहीं जा रही, अव्यर्थ काल उत्पन्न, एक मिनट का समय भी व्यर्थ न जाए, चलते फिरते उठते बैठते भजन में लगा रहे, साधन भजन में लगा रहे, नाम संकीर्तन में, हरि कथा कीर्तन में, किसी न किसी रूप में वो लगा रहे, विरक्ति संसारिक विषय भोगों में स्वाभाविक रूप में अरुचि रहे, यदि भोग आए तो उसे विरक्ति रहे। कृष्ण का कृष्ण के भोग के लिए यह है ऐसा समझ करके यथा योग्य उसका सम्मान भी है। कोई भी वस्तु हो वो कृष्ण के भोग के लिए है, हम लोगों के लिए नहीं, उसको भगवान का अर्पण करके उसका जो प्रसाद है वही ग्रहण। विरक्ति मान शून्यता, चैतन्य महाप्रभु जी ने भी बतलाया है, तृणादपि सुनिचिन तरुरपि सही सुनना अमानिना मान दे, अपने लिए मान की लालसा कभी किसी से न करे, नहीं तो वो जीवन पर दुखी रहेगा। मत सच सच सोचो जो मैं तीन से भी दीनहीन हूं, मान सम्मान हमारे गुण वर्गों का है, जाति वर्ण आश्रम धन ऐश्वर्य सौंदर्य उच्च पद आदि से अभिमान उत्पन्न होता है। और एक है प्रभुता पाई काय मद नहीं, प्रभुत्व पाकर के जाति वर्ण आश्रम धन ऐश्वर्य उच्च पद आदि से अभिमान हो, ये सब मिलने से अभिमान किसको न हो, सबको अभिमान हो जाता है, किंतु वैष्णव लोग दीनहीन बने रहते हैं। प्रहलाद महाराज जी को कभी भी अभिमान नहीं हुआ, ध्रुव को नहीं हुआ, चित्रकेतु महाराज जी अपने दूसरे तीसरे जन्म में, ये सब इन सबके रहने पर हृदय में मान न रहे वही मान शून्यता है। तो धन जन पुत्र परिवार सबसे धन संपत्ति से परिपूर्ण रहने पर भी तनिक भी अभिमान न आए, विशेष करके सौंदर्य रूप और विद्वता इत्यादि का गड़बड़ा भारी होता है, तो ये सब न रहे। आशा बंध, अच्छा यू कैन एक्सप्लेन सम,
Bhajan Rahasya of Srila Bhaktivinoda Thakur, that upon achieving this stage called Rati, this is the sixth Nyan, or sixth stage of Bhajan, then in such a person, nine symptoms will be seen in that person. Kshanti, Andhakaratva, Viratyamana, Samyapitita, Asabandha, Samutkata, Sadanama, Gyaruchi. So Kshanti means forgiveness, or that person will become very tolerant. Like Sri Haridas Thakur, he was beaten in 22 marketplaces, but he begged the Lord, oh, forgive them, forgive them. Like Sri Pariksit Maharaj, the embodiment of Udarata, compassion, he was cursed by a young Brahmin boy to die within 7 days, and the king had the power to punish that Brahmin back, but he never punished. Instead, with a very calm and forgiving mind, he heard Harikatha from Sri Sukadeva Goswami. We should understand that according to that verse, Tetenu Kampam, Sishumikshamano, that any happiness or unhappiness that is sent by Bhagawan is simply sent by Him out of His kindness to purify us. Sante. That person, Antikaratvam, he will never waste a second. He will continuously engage himself in the process of hearing, chanting, remembering, reading books, engaging in seva. He will not waste even a second of his valuable time. In that person, we will also see virakti. Virakti means complete detachment from all types of sense enjoyment. We should understand all objects and all persons to be ingredients for the enjoyment of Bhagawan and see them in such a way. And because we have to maintain our lives, we should offer those objects of enjoyment to Krishna and accept them in the form of prasadam after Krishna has enjoyed. In this way, there will be no disturbance for us. Mam Sunita. Sri Chaitanya Mahaprabhu has given us that verse, Kanarapi Sunichinam Karorapi Suvishnana Madana Madana Kirtanya Sarahari. One should be very tolerant like a tree. One should be more humble than a blade of grass. One should offer all respects to others and never demand respect for oneself. With this mood, one can chant Harinam continuously. So we should never in any way work for our own position. We should understand that all name and fame are meant for our Guru and Guru Varga, and we should give all things to them. So in a Vaishnava, all qualifications will be seen, but he will have no pride. Devotees like Dhruva, like Prahlad, like Sri Ambarish Maharaj, they had all types of good qualities, they had all types of wealth, they had all types of physical beauty, all learning, all education, qualified sons, beautiful wives. But still, they never develop pride in all these things.
मानव शून्यता के लिए बतलाया एक समय अर्जुन के मन में ये भावना आई मैं वर्ण जाति धनुर्विद्या रूप सौंदर्य सब विषय में मैं श्रेष्ठ हूं मेरे बराबर जगत में बहुत नहीं कोई नहीं है कृष्ण इसको समझ गए और उन्होंने कहा जी अर्जुन तुम धन में कुल में मर्यादा में बल में धनुर्विद्या में तुम्हारे समान कोई नहीं है सचमुच में यह बात ठीक है एक बात करो ऐसी कोई चीज ले आओ जो तुमसे तुच्छ हो ऐसी कोई भी वस्तु ले आओ जिसको तुम तुच्छ समझते हो उसका कोई उपयोग नहीं है ऐसा कोई चीज लाओ अर्जुन जहां जाते वहीं पर वो ऐसा प्रमाण कर देता जो तुम ही सबसे तुच्छ हो अंत में विचार करके देखा जी ये टट्टी मल पैखाना जो कर दिया है इसे सभी घृणा करते हैं इसे जरूर हमसे तुच्छ होगा ऐसा सोच करके उसको उठा करके और कपड़े में बांधने लगे ले जाने के लिए कृष्ण के पास में तो वो बोल खड़ा हो गया और बोला अरे हमको कहां किस लिए ले जा रहे तो तुम संसार में सबसे तुच्छ पदार्थ हो घृणित व्यक्ति हो तुमको कोई नहीं चाहता उन्होंने कहा जी देखो तो कल मैं बड़ा सुंदर फल था आम लेबू और कितने सुंदर था पकवान था राबड़ी खीर मलाई थी था और तुम्हारे संग से मैं ऐसा आज हो गया तो समझ लीजिए तुम है नीचे या हम है नीचे यह सुनकर अर्जुन बड़े लज्जित हुए और कृष्ण के पास खाली लौट गए जी प्रभु हमारे जैसा नीच हमारे जैसा धोर्त या कपटी या नीच कोई जगत में नहीं है कृष्ण अब समझो ये मान शून्यता तब समझे इस मान का कोई भी मूल्य नहीं है कैन यू
especially in this present age of Kali Yuga, everyone thinks I'm the greatest. No one is more intelligent than me. No one is more wealthier than me. So very hard to find anyone who actually is feeling Trinada Pisanichana, or actual humility. So one time, in order to teach us...
Even Damodar Maharaj knows that I'm very beautiful. I'm a good speaker. I know Hindi, English, Bengali and all so many languages.
So,
no one can compete with me.
But still he is very humble always.
Damodar Maharaj is standing here, and how polite and humble he is.
Very good manner.
So, Krishna said, Arjuna, you should go and find something that is lower than you.
He went to so many, and he thought that they are more wretched than me. But they proved that we are not less than you. We are more superior than you. And then in the last he went to school.
So Arjuna was searching everywhere to find someone who was more qualified than him. Insignificant. So everywhere he went, he could not find anyone less than him. He was so humble. So finally he found on the ground some stool. So he picked it up and put it in his cloth. And his own stool.
Yes.
No, some stool.
Would you say? Paikhana ke niye jete chaat chilo. Oi paikhana tokhon bolo.
He found some stool on the ground. But whose stool that was not clarified. Took that stool in his cloth and he brought that to Krishna. Oh Krishna, yes, I have found something lower than me, because stool is rejected by everybody. Nobody likes stool. Then he was thinking. Oh, I see. Talking stool.
Holding his hand. Then he began to tell.
That stool said. That stool said, Arjuna said to the stool, I think that you are lower than me. And stool replied, no. I am rejected by everyone because nobody likes me, bad smell, this and that. Arjuna said, no. I am less than you because yesterday you were many good things, robbery, rasgulla, fruit.
What? What? Can you tell your stool is superior than you are inferior?
Because yesterday it was Rasgulla.
Huh? You want to give the story,
then
I'll give answer.
No. I'm asking.
I'm superior to stool.
No. Your stool is telling to you that yesterday I was very beautiful, sweet, mindful. I was orange. I was rabadi and malai and rasagolla. But only due to you, kusanga.
Oh, I have to know that. Put your association.
Understand? So, don't laugh, but try to realize this fact. Asa bandhaha. कृष्ण हम पर जरूर कृपा करेंगे कृष्ण हम पर जरूर कृपा करेंगे, क्यों? मैं उनका नित्य दास हूँ, वो हमारे नित्य प्रभु हैं, वे बड़े दयालु हैं, इसीलिए उनका अवतार होता है, इसलिए जरूर कृपा करेंगे। इस प्रकार दृढ़ विश्वास के साथ में भजन में मनोनिवेश करने का नाम आशा बन। किंतु यह याद रखना चाहिए, जरूर मिलेंगे तो चुपचाप दिन भर बैठे रहे हाथ पर हाथ धर, ऐसा नहीं, हाथ पर हाथ रख करके चुपचाप सोया रहे, कोई भजन न करे, तो यह आशा बंद नहीं है, उत्कंठा होनी चाहिए उसमें। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी विलाप कुशमांजलि में कहते हैं, आशा भरई अमृत सिंधु मयि कथंचित कालो मयाति गमितः किल साम्प्रतमे कंचित कृपा मयि विधास्तस नैव किं मे प्राणै ब्रजेन बरयो रूपकारणापि। आशा भर हे बरो रे राधे, हे परम सुंदरी, सुंदर जंघो वाले राधिके, मेरी आशा अमृत समुद्र को प्राप्त करने की भांति अत्यंत दुर्लभ है। मेरी आशा क्या है? अमृत के समुद्र में गोता लगाने के लिए है मेरी आशा, और बड़ी दुर्लभ है, ये संभव नहीं है। मैं उसे प्राप्त करने की आशा में बड़ी उत्कंठा से जीवन के दिन काट रहा हूं, आज होगा, आज कृष्ण मिलेंगे, आज कृष्ण मिलेंगे, आज मिलेंगे। अब तुम इस दुखी के ऊपर में दया करो, तुम्हारी कृपा के बिना मेरा जीवन, मेरा ब्रजवास और तो क्या, कृष्णदास से यह सब कुछ व्यर्थ है। इसका नाम है आशा बंधन। एक किसी कवि ने कहा है, प्राचीना नाम भजन दुष्करम से दुष्करम में नरस्य न जलति हृदय भक्ति ले विश्वतरी जी अगर तबाकर्ण कारुण्य बीजी आशा बिंदु क्षिपन उपैतिहा हंत सत्यम। ओ यानी रघुनाथ दास गोस्वामी और पद्यावली, मैं जब ये स्मरण करता हूँ, रूप सनातन गोस्वामी इत्यादि कहते कठोर भजन किया, यहाँ तक कि ध्रुव जी ने कितनी कठोर समस्या की, नारद जी ने कठोर तपस्या की, और सब भक्त लोग कितनी कठोर तपस्या किए। अभी गौरकिशोर दास जी महाराज अभी कुछ दिन हुए, वे कैसे वैराग्यवान पुरुष थे, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर दिन रात जग करके भजन करते थे, और कहा मैं उनका जब भजन की बातें सुनता हूँ तो मेरे हृदय में निराशा हो जाती है, और जब मैं भगवान आपकी करुणा को देखता हूँ, आपकी करुणा समस्त विश्व में छाई हुई है और कहीं न कहीं वर्षा वो होगी, और उस वर्षे के छींटे हम पर जरूर पड़ेंगे, आपकी जरूर कृपा पाऊंगी, तो हृदय में धीरे 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 आशा आने लगी है। इस तरह से आशा बंधन, इसलिए आशा रखते हैं, जीवित रहते हैं, जरूर होगा, कब होगा इसके लिए सब कंठा है। अपने अभीष्ट की प्राप्ति के लिए अत्यंत प्रगाढ़ लोभ ही समुत्कंठा है। अपनी अभीष्ट क्या? ब्रज भक्ति, कृष्ण भक्ति, राधा दास्य, ये अभीष्ट है, उसको पाने के लिए प्रगाढ़ लोभ, प्राण चला जाएगा, किंतु अपना अभीष्ट नहीं छूटेगा। देखो एक मणियारा सर्प होता है जिसके फण में मणि होती है, वो रात में मणि को रख करके इधर उधर में अपना कुछ खाने पीने की चीज संग्रह करता है, और कोई बहेलिया ऊपर में चढ़ गया पेड़ के ऊपर, और जब ही मणि सर्प रख करके इधर उधर जाता है, तब ही ऊपर से कोई चीज से ढक दिया भारी लोहे से, अब उस सर्प नहीं पा सका तो प्राण को छोड़ देता है। साधन भी ऐसा होना चाहिए, किसी प्रकार से धैर्य धारण करे, वैसे सम उत्कंठा होनी चाहिए, ऐसे हृदय में लोभ उत्पन्न हो जाए उसके लिए प्राण न्योछावर कर देते हैं। केनो आचार्य प्राण की सुख लगे नरोत्तम दास के नो ना दे प्राण गंधोस्ति दरापि में हरो न कंदाम्य सौभाग्य भरम प्रकाशित पंसी विलास्यानन अवलोकनम बिना विभत्म प्राण पतन। कहां हमारे हृदय में प्रेम है? प्रेम की गंध नहीं है। आज प्रेम की गंध है लोग कहते हैं तो कहां है? अरे मछली तो पानी से निकाल देने से तड़प तड़प करके प्राणों को छोड़ देती है, और मैं अपने विलास्या बंसी मुख में धार मुख में कमल नयन श्री कृष्ण को न दे करके आज तक भी जीवित है। प्रेम कहां है? प्रेम नहीं। ये है जाइए समुत्कंठा अजात पक्षाई व मा तरम खगा तन्ने जथा बक्ष तरा सुधाता प्रिय प्रिय विषतंग विषन्ना मनोहर में दिदीक्ष। वृत्तासुर जी कह रहे हैं अजात पक्षायु मातरम खगा, जिस प्रकार से एक को चिड़िया का पक्षी अभी जन्म लिया, आंखें नहीं खुली हैं, पंख भी उदित नहीं हुए, और अपने मैया के लिए चिंतन करता है, मैया कहाँ गई, मैया कहाँ गई, किस लिए? स्तन्यम, हमें दूध पिलाएगी और मुझे कुछ खिलाएगी। अथवा बच्च तरा, जैसे कि बच्चा बछड़ा अपनी मैया के लिए पुकारता है, डांडा करता है, इसलिए मैया एक दूध पिलाएगी और हमें भोजन कराएगी। और जैसे प्रिय पीवे प्रिय विषतम विषण, जैसे प्रिया अपने प्राण प्रियतम के लिए उसके लिए प्रतीक्षा करती है, उसके सेवा की परिपाटी ठीक करती है और उसकी बातें अपने बच्चों से कहती है, उसी प्रकार से हमारा मन कब अपने प्रियतम कृष्ण में लगता है। तो इस तरह से समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, जितने प्रकार के भजन है उनमें नाम भजन ही सर्वश्रेष्ठ है, इस विश्वास के साथ निरंतर नाम लेना ही नाम संकल्प में रुचि कहा गया। रुचि के साथ में नाम करें, विश्वास के साथ में, श्रद्धा पूर्वक नाम लेने से नहीं होगा। मन को स्थिर करके और फिर गुस्से करने का नाम ये इससे नहीं होगा, ये निष्ठा हुआ। रुचि होनी चाहिए स्वाभाविक, नहीं होने से हम रोक नहीं सकते अपने को, इसलिए स्वाभाविक रूप में रुचि होनी चाहिए। नाम में ऐसे भक्तों की रुचि होती है जिनको ये हृदय में रति उत्पन्न हो गई है। कृष्ण नाम साधन और साध्य दोनों है, हरे कृष्ण महामंत्र ही सर्वोत्तम नाम है, इसी की शिक्षा गौर सुंदर जी ने। वर्तमान काल में बहुत से लोग अब भक्तों के रचित कल्पित रसाभास युक्त पद को नाम मंत्र हाकी पतन इत्यादि बहुत से ऐसे हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, उसको अपने संप्रदाय में चला। कोई कहते कृष्णन शरणम मम, ये कौन सा मंत्र है, वेद का है, नदी को वेद का न क्या है, ये तो शरणागति है, वैदिक मंत्र गोपाल मंत्र काम गायत्री इत्यादि गुरु मंत्र गुरु महाप्रभु का मंत्र ये सब है। लोग समझाने से भी नहीं समझते, जो कुछ कह दिया किसी को गुरु मान लिया, गुरु ने कहा जी भेड़ बकरी करो तुम्हारी विशाल व्यवस्था को, तो भेड़ बकरी कर देंगे। इसलिए शास्त्र युक्त मंत्र नहीं है, इनका कीर्तन करना उचित नहीं है। महाप्रभु जी ने कहा यह बिना ना बोली बे आर ना बोलाइए, हरे कृष्ण मंत्र सदा लई बे आर यह बिना ना बोली बे ना बोलाइए। इस महामंत्र के अतिरिक्त और दूसरा कोई मंत्र मत बोलना, मतलब क्या? गोपाल मंत्र को भी छोड़ देने के लिए और काम गायत्री को भी छोड़ने के लिए नहीं, ब्रह्म गायत्री को छोड़ने के लिए। महामंत्र ये कीर्तन और जपन जप में ये हमारे नौ जो मंत्र हैं ब्रह्म गायत्री से लेकर के महामंत्र तक, ये सभी हम लोगों को करने हैं। यो ट्राई टू नो फर्स्ट व्हाट आई एम टेलिंग एंड देन
So continuing on, Asabanga, in that person in whom Rati or Bhav Bhakti has arisen, he will always feel a great hope. Oh, Krishna must give mercy to me because I am his eternal servant and he is my master. Therefore, I have right for him to give mercy to me. One will have dridha biswas, very strong faith. Krishna must be merciful to me. We should not think, all day sleeping on it like this, oh, Krishna will give me mercy. No. One should be very utkanti, very enthusiastic to perform sadhana bhajan. Like Sri Raghunath Das Goswami is praying in Sri Vila Kusumanjali. Oh, Krishna, oh, Srimati Radhika, I know that your mercy is very rarely attained, more rare than nectar. But today, I must get your mercy. Without your mercy, then I have my residing in Vrindavan and my chanting of Krishna Bhajan is useless. So Sri Rupa Goswami has also prayed. Oh, Krishna, when I remember the austerities of the previous great authorities, like Dhruva, like Prahlad, when we hear of the very great renunciation of Sri Gokushodas Babaji Maharaj, or how Srila Bhaktivinoda Thakur performed bhajan day and night, weeping, then we become helpless. But Krishna, I remember one of your qualities. You are very merciful to the fallen. Therefore, again, I become hopeful. So this asabandha, or desire, to attain the mercy of Krishna is based on lobha. Lobha means greed. I must achieve my manobist, or my most cherished desire. This greed is called enthusiasm. But what is our goal? Our goal is Braja Bhakti. And more than this, our goal is the service of Srimati Radhika. With this greed, we must perform bhajan. I can give up my life, but I cannot give up my cherished desire. Like, there is one snake, he produces a very wonderful jewel. And he may keep that jewel anywhere and go here and there for eating and drinking. But he's always remembering that jewel. And if that he will be separated from that jewel, then that snake will die in separation. Like, Srinivasan Das Thakur is praying. Oh, why I have not given up my life, I have not attained the service of Gauranga. Like Srimati Radhika prays, Naprema Gango Street. I have no smell of Krishna Prema, because even a fish, when he is separated from water, he flaps his life, chip-chap, like this. The proof that I have no Prema is because I am very happily living in this world. But I am not seeing the beautiful face of Krishna as he plays his flute, and I am still alive. This is proof that I have no Prema. So an example of that utsahan or enthusiasm or greed is seen in the character of Sibrinasur. He prayed, oh, I want to always cry for Krishna like a baby bird. When a bird is born, it has no feathers, no wings, and all day and night he opens his mouth and thinks and cries for his mother. Sibrinasur said, I want to cry for you like that. Then he's thinking, no, even more higher than to cry like a baby bird is to cry like a mother, a calf. The calf all day is tied to the post and he is crying for his mother. Oh mother, where are you? But even higher than this is the way one lady, she constantly thinks of her beloved in the house. So this is called greed to attain one's desired object. So we are praying, when our mind will become like this. The next symptom, Sadanama Gadaruchi. That person will always have taste in the chanting of the name. There's a difference between nishta and taste. Oh, every day I have to chant a fixed number of rounds with a fixed mind. This is called nishta. But we are not talking about this here, Sadanama Gadaruchi. In this stage, one will have swabhavik or natural taste. One cannot stop chanting at this stage. He will have so much interest and desire to chant continuously. So one should be very careful. One should chant the correct mantras and the correct method. So these days, so many speculation mantras are going on. Sri Krishna Saranamama. This is no Vedic mantra. This is only surrender to Krishna. So these mantras, all these other mantras, they're useless. So once you chant, the proper mantras received in the proper sampradaya. For example, especially Maha Mantra, and all the Vedic mantras received by Gurudev, especially Gopal Mantra, Kam Gayatri, Brahma, and some Brahma Gayatri. One should chant all these in the proper way, then one can get the result. Saranama Gavarishi.
Gurakhyane Asakti. Bhagavan ke gun gan karne mein sab samay asakti. Aisa baitha na rahe. Harinam kare, athwa Bhagavan ke bhakton ke gunan baat kare. तद्वसति स्थले प्रीति तद्वते और वहां भगवान की जहां लीलाएं हुई हैं उनका धाम है जन्म है वहां पर सब समय रहने की इच्छा जैसे सनातन गोस्वामी एक एक ब्रज के एक एक वृक्ष के नीचे एक एक वृंदावन में पावन सरोवर रूप गोस्वामी जी कहां रहते थे पेड़ कदम में रहते थे सनातन गोस्वामी पावन स्वरूप पर रहते थे रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड में रहते थे और सब गोस्वामी इधर उधर सर्वत्र भ्रमण करते किंतु रूप गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी केवल राधा कुंड में स्थिर रूप से रहते थे इस तरह से उनके लीला स्थलियों में निवास करने में प्रीति ये इसका एक अनुभव तथा गौर अमार जे सब स्थान करिल भ्रमण रंगे से सब स्थान हिरवि अमी प्रणय भगति संगे धाम वासी जने प्रणति करिया मांगी भक्ति शरीर के द्वारा यदि धाम वास संभव न हो तो जहां रहे वहीं से वृंदावन का ध्यान करता हुआ ब्रजमंडल का ध्यान करता हुआ वहीं से भगवान नाम करे किंतु गुरु वैष्णव के अनुगत गुरु वैष्णव का अनुगत्य नहीं होने से वो धाम में वास भी नहीं होगा हरिनाम कीर्तन भी नहीं होगा इस प्रकार से भोग और मोक्ष की कामना करने वाले कर्मी और ज्ञानियों में यदि उल्लिखित भाव कोई यदि चिन्ह दिख पड़े भी तो उनका शुद्ध गौ भक्ति नहीं है रति नहीं वो रति का आभास है उनमें जैसे कोई मायावादी उनको फुंका जिम्बा अष्ट शाक्ति कोई भाव दिखाई पड़ा नत मानो की एक आदमी ने कहा जी मैंने भगवान का दर्शन किया है एक आदमी हमसे बोले जी मैंने भगवान का दर्शन किया है तो उसका प्रमाण क्या है आपको अब तो हमने तो भगवान का दर्शन किया है तो आप प्याज लहसुन किस लिए खाते हैं और फिर अपनी मैया और बाप अपनी बेटी और बेटे और बहू के साथ में क्यों रहते हैं पागल होकर के कृष्ण भजन में क्यों नहीं लग जाते धाम में क्यों नहीं रहते हैं तो हम लोग लक्षण विचारते हैं वह लाख कहे हम नहीं मरेंगे आजकल बहुत से ऐसे लोग कहते हैं जो भगवान का दर्शन कर दिया किंतु भगवान का दर्शन करना इतना सहज नहीं है इसलिए उनकी बातें नहीं मानेंगे हम तो इसको कसौटी पर कस करके तब समझेंगे इसलिए भगवान का दर्शन कर लिया और उनको रति हो गई है उसको अष्ट सात्विक भी कहा हमने देखा है कि कोई एक आदमी भगवान की कथा सुन रहा था और सुनते सुनते ऐसे चमक उठा फिर गिरने लग गया मूर्छित हो गया किंतु हमने देखा कि ये शुद्ध भाव नहीं है प्रभुपाद कहते थे ये कनिष्ठ अधिकारी अभी मध्यम अधिकारी भी नहीं है वृंदावन में बड़े बड़े मुक्त जिसको लोग कहते हैं सिद्ध बाबा जी उनको भी नहीं पाए क्योंकि कसौटी पर कष करके वो देखते हमारे गुरु जी का भी यही विचार इस प्रकार से प्रगाढ़ भावावस्था आने पर जो अनुभव उदित होते हैं वो भक्ति के स्वामी सिंह ने दिए गए हैं दूसरे दिन में उसका पाठ करूंगा आज यही चल रहे हैं कल यदि रहूंगा तो कल भी परसों तक रहेंगे 12-13 तारीख तक तब तक रहेंगे तब तक प्रवचन करेंगे नहीं रहेंगे तो नहीं तू देखी इसकी अमित की बोल छी यदि थाके ताले कर लो ना थाके हमर कुछ ठीक है छे कुछ साथ कौन जाएगा जाबो কেউ কিনে তোমাকে তোমরা কিনে নিয়েছো পয়সা দিয়ে, তাহলে
we will see if that person is very touched. So here we're chanting the nine form qualities and pastimes of Krishna and his devotees. Which is part of Vasudeva's study. That person will be very attached to staying in the holy places where Krishna has performed or Mahaprabhu has performed their pastimes. Like this Goswamis, how much they were attached to Brajabhumi. Every night they stayed under a different tree. Like Sri Sanatana Goswami, he stayed so much in Pavan Saroba. Raghunath Das Goswami, he stayed at Radhakund. And all Goswamis moved here and there. But see, Rupa Goswami, he also stayed at Kedamba. So this means attachment for the Dham. Gaura Maad Ishavastan. Oh, when will I be able to move? In the places where Mahaprabhu performed his pastimes in Gaur Mandal, in the association of his loving devotees. So this is called an anubhav. If you cannot stay in the Dham by body, then you should stay there by mind. But either by body or by mind, you must be in the association of Vaishnava, Anugatya, or the guidance of Gurudev and Vaishnava. Otherwise, your staying in the Dham is bogus, and your chanting the name will not give you a result. Sometimes in jnanis, yogis or karmis, we see astasakri bhavs or symptoms, bodily symptoms of spiritual ecstasy. But we should not accept this as real. We can accept this as a ratiya bhavs, as a shadow or a semblance of real ecstatic emotions. For example, sometimes we see the maya bodies in the harikatha, they are weeping and trembling. But this is not real. Astasakri bhav, this is only a semblance. Some people say, I saw Bhagavan, I saw Krishna. So what is the proof? Guru Maharaj says, we never accept this. Our desire to attain the mercy of Krishna is based on lobha. Lobha means greed. I must achieve my manobis, or my most cherished desire. This greed is called enthusiasm. But what is our goal? Our goal is Braja Bhakti. And more than this, our goal is the service of Srimati Radhika. With this greed, we must perform bhajan. I can give up my life, but I cannot give up my cherished desire. Like, there is one snake, he produces a very wonderful jewel. And he may keep that jewel anywhere and go here and there for eating and drinking, but he's always remembering that jewel. And if that you will be separated from that jewel, then that snake will die in separation. Like, Sinaratam Das Thakura's praying, oh, why I have not given up my life, I have not attained the service of Gauranga. Like Srimati Radhika prays, Naprema Ganga Sri, I have no smell of Krishna Prema, because even a fish, when he is separated from water, he flaps his life, chip chap, like this. The proof that I have no Prema is because I am very happily living in this world. But I am not seeing the beautiful face of Krishna as he plays his flute, and I am still alive. This is proof that I have no prema. So an example of that utsahan or enthusiasm or greed is seen in the character of Sibrinasur. He prayed, oh, I want to always cry for Krishna like a baby bird. When a bird is born, it has no feathers, no wings, and all day and night he opens his mouth and thinks and cries for his mother. Vritasur said, I want to cry for you like that. Then he's thinking, no, even more higher than to cry like a baby bird is to cry like a mother, a calf. The calf all day is tied to the post and he is crying for his mother. Oh mother, where are you? But even higher than this is the way one lady, she constantly thinks of her beloved in the house. So this is called greed to attain one's desired object. So we are praying, when our mind will become like this. The next symptom, Sadanama Gadaruchi. That person will always have taste in the chanting of the name. There's a difference between nishta and taste. Oh, every day I have to chant a fixed number of rounds with a fixed mind. This is called nishta. But we are not talking about this here, sadhana mangana ruchi. In this stage, one will have swabhavik or natural taste. One cannot stop chanting at this stage. He will have so much interest and desire to chant continuously. So one should be very careful. One should chant the correct mantras and the correct method. So these days, so many speculation mantras are going on. Shri Krishna Saranam Mama. This is no Vedic mantra. This is only surrender to Krishna. So these mantras, all these other mantras, they're useless. So one should chant the proper mantras received in the proper sampradaya. For example, especially Maha Mantra, and all the Vedic mantras received by Gurudev, especially Gopal Mantra, Kam Gayatri, Brahman, and some Dhamma Gayatri. One should chant all these in the proper way, then one can get the result. Saranama Gavarishi.
गुणाख्याने आ सकती भगवान के गुण गान करने में सब समय आ सकती ऐसा बैठा न रहे हरिनाम करे अथवा भगवान के भक्तों के गुणान बात करे तद्वसती स्थले प्रीति तद्वते और वहां भगवान की जहां लीलाएं हुई हैं, उनका धाम है जन्म है वहां पर सब समय रहने की इच्छा जैसे सनातन गोस्वामी एक एक ब्रज के एक एक वृक्ष के नीचे एक एक वृंदावन में पावन सरोवर रूप गोस्वामी जी कहां रहते थे पेर कदम में रहते थे सनातन गोस्वामी पावन सरोवर पर रहते थे रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड में रहते थे और सब गोस्वामी इधर उधर सर्वत्र भ्रमण करते किंतु रूप गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी केवल राधा खंड में स्थिर रूप से रहते इस तरह से उनके लीला स्थलियों में निवास करने में प्रीति ये इसका एक अनुभव तथा गौर अमार जे सब स्थान है भ्रमण रंगे से सब स्थान है प्रणय भगत धामवासी जने प्रणति करिया मांगी को पिता शरीर के द्वारा यदि धाम वास संभव न हो तो जहां है वहीं से वृंदावन का ध्यान करता हुआ ब्रजमंडल का ध्यान करता हुआ वहीं से भगवान नाम करे किंतु गुरु वैष्णव के अनुगत गुरु वैष्णव का अनुगत नहीं होने से वो धाम में वास भी नहीं होगा हरिनाम कीर्तन भी नहीं इस प्रकार से भोग और मोक्ष की कामना करने वाले कर्मी और ज्ञानियों में यदि उल्लिखित भाव कोई यदि चिन्ह दिख पड़ेगी तो उनका शुद्ध वह भक्ति नहीं है रति नहीं वो रति का आभास है उनमें जैसे कोई मायावादी उनको फुंकार जिम्बा अष्ट सात्विक कोई भाव दिखाई पड़ा नॉट मानो की एक आदमी ने कहा जी मैंने भगवान का दर्शन किया है एक आदमी हमसे बोले जी मैंने भगवान का दर्शन किया है तो उसका प्रमाण क्या है आपको तो हमने तो भगवान का दर्शन किया है तो आप प्याज लहसुन किस लिए खाते और फिर अपनी मैया और बाप अपनी बेटी और बेटे और बहू के साथ में क्यों रहते हैं पागल होकर के कृष्ण भजन में क्यों नहीं लग जाते धाम में क्यों नहीं रहते हैं तो हम लोग लक्षण विचारते हुआ लाख कहे हम नहीं मरे आजकल बहुत से ऐसे लोग कहते हैं जो भगवान का दर्शन कर दिया किंतु भगवान का दर्शन करना इतना सहज नहीं है इसलिए उनकी बातें नहीं मानेंगे हम तो इसको कसौटी पर कस करके तब समझेंगे इसलिए भगवान का दर्शन कर लिया और उनको रति हो गई है उसको अष्टसात्विक भी कहा हमने देखा है कि कोई एक आदमी भगवान की कथा सुन रहा था और सुनते सुनते ऐसे चमक उठा फिर गिरने लग गया मूर्छित हो गया किंतु हमने देखा ये शुद्ध भाव नहीं है प्रभुपाद कहते थे ये कनिष्ठ अधिकारी अभी मध्यम अधिकारी भी नहीं है वृंदावन में बड़े बड़े मुक्त जिसको लोग कहते हैं सिद्ध बाबा जी उनको भी नहीं पाए क्योंकि कसौटी पर कस करके हमारे गुरु जी का भी यही विचार इस प्रकार से प्रगाढ़ भावावस्था आने पर जो अनुभव उदित होते हैं वो भक्त जो स्वामी संघों ने दिए गए हैं, दूसरे दिन से उसका पाठ करूंगा। आज यही चक्र है, कल यदि रहूंगा तो कल भी परसों तक रहेंगे, 12-13 तारीख तक, तब तक रहेंगे तब तक प्रवचन करेंगे, नहीं रहेंगे तो नहीं करेंगे। देखिए इसकी अमित बोल যদি থাকি তাহলে করবো, না থাকি আমার কিছু ঠিক আছে, কোথায় জায়গায় যাবো, কেউ কিনে তোমরা কিনে নিয়েছো পয়সা দিয়ে, তাহলে
to hear him chanting the nine form qualities and pastimes of Krishna and his devotees, which is part of Vasudeva's study. That person will be very attached to staying in the holy places where Krishna has performed or Mahaprabhu has performed their pastimes. Like the Goswamis, how much they are attached to Brajabhumi. Every night they stayed under a different tree. Like Sri Sanatana Goswami, stayed so much in Parvat Sarova. Raghunath Das Goswami, he stayed at Radhakund. And all Goswamis moved here and there. But see, Rupa Goswami, he also stayed at Kedamba. So this means attachment for the Dham. Gaura Maad Ishavastan. Oh, when will I be able to move? In the places where Mahaprabhu performed his pastimes in Gaura Mandal, in the association of his loving devotees. So this is called an anubhav. If you cannot stay in the Dham by body, then you should stay there by mind. But either by body or by mind, you must be in the association of Vaishnava, Anugatya, or the guidance of Gurudev and Vaishnava. Otherwise, your stay in the Dham is bogus, and your chanting the name will not give you a result. Sometimes in Gyanis, Yogis or Karmis, we see astasakti bhavs or symptoms, bodily symptoms of spiritual ecstasy. But we should not accept this as real. We can accept this as a ratiya bhavs, as a shadow or a semblance of real ecstatic emotions. For example, sometimes we see the Maya bodies in the Harikata, they're weeping and trembling. But this is not real astasakti bhav, this is only a semblance. Some people say, I saw Bhagavan, I saw Krishna. So what is the proof? Guru Maharaj says, we never accept these.